लगभग 7 महीने बाद ओबेरॉय पैलेस में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। वहां हाउस हेल्पर धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे। सुबह का वक्त था, इसलिए वो डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर रहे थे। जब डाइनिंग टेबल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, तब उनमें से एक हाउस हेल्पर ने कहा, जाकर सर और मैडम को बुला लाओ ताकि वो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ आ जाएं। काम रोज से 5 मिनट पहले हो गया, 5 मिनट बाद में जाऊंगी तो सही रहेगा, वरना 1 मिनट भी इधर उधर किया तो तुम उनके गुस्से को जानती ही हो, दूसरी मेड ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, जिस पर उसने हामी भर दी। पिछले 7 महीने में ओबेरॉय पैलेस का नक्शा पूरी तरह बदल गया था। पहले वहां काम करने वाले लोग खुश होकर काम करते थे, लेकिन अभी वहां काम कर रहे लोगों के चेहरे पर मायूसी के भाव थे। साफ महसूस हो रहा था, वहां जो भी हो रहा हो वो उससे खुश न थे। लगभग 4 मिनट बीत जाने के बाद वो हाउस हेल्पर अपने कदम बढ़ा रही थी। वो कमरे के पास पहुंची ही थी कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम वहीं पर रुक गए। अंदर से एक सख्त और तेज आवाज आई, दामिनी तुम्हें कितनी बार कहा है अपने काम तुम करती रहना, लेकिन वामिका की देखरेख में 1% भी फर्क नहीं आना चाहिए। वो विजय ओबेरॉय था जो इस वक्त ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दामिनी अभी भी बिस्तर पर थी और वहां रखे एक झूले में लगभग 3 से 4 महीने की छोटी बच्ची रो रही थी। तुम कर लो ना, तुम्हारी भी तो बेटी है, एक नैनी क्यों नहीं लगवा देते तुम, दामिनी ने बंद आंखों से कहा। शोर सुनकर उसकी नींद डिस्टर्ब होने की वजह से उसने एक तकिया अपने कानों पर लगा लिया। विजय ने उसकी तरफ देखकर सार्कास्टिक वे में सिर हिलाया और उठकर वामिका को गोद में ले लिया। वो उसे गोद में झुलाते हुए चुप करने की कोशिश कर रहा था। शांत हो जाओ बेटा, देखो यहाँ सब कुछ ठीक है, कितना अच्छा तो चल रहा है सब कुछ, आप मेरे लिए बहुत लकी हो, जब से आप मेरी लाइफ में आई हो मुझे मेरा सब कुछ मिल गया। दामिनी को विजय और वामिका की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी नींद में मग्न थी। कुछ देर में जब वामिका चुप हो गई, तब हाउस हेल्पर ने दरवाज़ा खटखटाकर नीचे ब्रेकफास्ट पर आने के लिए कहा। विजय वामिका को लेकर ही नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर जाने लगे। अब उस घर में पूरी तरह विजय और दामिनी का कब्जा हो चुका था। विजय ने ओबेरॉय इंडस्ट्री को भी वापस हासिल कर लिया था। वैसे भी आहान के एक्सीडेंट के बाद ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आहान के विला में अलग ही माहौल था। वहां सुबह सुबह काफ़ी हड़बड़ाहट मची हुई थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर हाउस हेल्पर जल्दी जल्दी खाना सर्व कर रहे थे। उनके पास में शिवानी भी खड़ी हुई थी, जिसने एक सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी और वो वहां काम करने वाले हाउस हेल्पर को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। शिवानी का चेहरा उतरा हुआ था। अचानक शिवानी कहीं गुम हो गई, तभी एक हाउस हेल्पर ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा, मैम हो गया है, सर और मैडम को डाइनिंग टेबल पर आने का बोल दूँ। रहने दो, शिवानी ने बुझी की आवाज़ में कहा और फिर टेबल पर आ गई। कुछ ही देर में आयुष भी वहां पर पहुंच चुका था। वो शिवानी के पास बैठते हुए बोला, रिलैक्स कीजिए मॉम, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो हम कभी हमारा सब कुछ वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर शिवानी की आंखें भर आईं। उसने आयुष की तरफ देखकर सिसकते हुए कहा, कितनी मुश्किलों के बाद सब कुछ अच्छा हुआ था और देखो ना वापस सब कुछ बिगड़ कर रह गया है। उसने हमारा सब कुछ छीन लिया है और हमें प्रोटेक्ट करने वाला ही शख्स अपने होश में नहीं है, सिर्फ आहान ही है जो उसे कंट्रोल में कर सकता है, पर उसे तो कुछ, बोलते हुए शिवानी चुप हो गई थी क्योंकि उसकी नज़र सामने खड़े आहान पर गई। आहान को वहां देखकर शिवानी को ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और प्लेट में खाना डालने लगी। आहान उनके पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं रही हूँ, जुकाम लग गया इस वजह से आंखों से पानी आ रहा है, शिवानी ने बहाना बनाते हुए कहा। फिर आहान ने आयुष की तरफ देखा तो उसने थम्स अप करके सब कुछ ठीक होने का इशारा किया। सब ठीक होने का सुनकर आहान ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और ब्रेकफास्ट करने लगा। कुछ देर में उसका खाना हो गया तो वो ऑफिस के लिए निकल गया। जब से विजय और दामिनी ने शिवानी से उसका सब कुछ छीना था, तब से वो आयुष के साथ आहान के घर पर ही रह रही थी। आहान के जाते ही शिवानी ने आयुष से कहा, तुम उसके साथ जाओ, ऑफिस जाकर ब्रेकफास्ट कर लेना, अपने भाई का ख्याल रखना, एक वक्त ऐसा था जब वो हमें सबसे प्रोटेक्ट करता था और आज हमें उसे सबसे बचाना है। आयुष ने उनकी बात पर हामी भरी और जल्दी से एक सैंडविच उठाकर आहान के पीछे दौड़कर जाने लगा। वहीं शिवानी वहां पर बैठे अपनी किस्मत पर रो रही थी। अचानक ही उसे 7 महीने पहले की बात याद आ गई, जब आहान का एक्सीडेंट हुआ था। लगभग 1 हफ्ते तक वो कोमा के स्टेट में था और जब कोमा से बाहर आया तो उसके टेस्ट के बाद डॉक्टर ने शिवानी और आयुष को अपने केबिन में बुलाया था। केबिन में आते ही शिवानी ने जल्दी से पूछा, मेरा बेटा ठीक तो है ना डॉक्टर, हमने उनके कुछ टेस्ट किए हैं और साथ ही उनसे बात करने की भी कोशिश की, इंटरनल इंजरी थी और चोट सीधे उनके ब्रेन पर लगी है, ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया है, ये तो शुक्र मनाइए कि सर्जरी से चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, पर अभी भी कुछ डाउट है, एक्चुअली हमने आहान से बात करके देखी है तो उसे ठीक से कुछ याद नहीं है, या यूं कहें वो हर एक शख्स की शक्ल भूल चुका है, बस याद है तो कुछ गिने चुने नाम और उनमें से एक नाम है डॉल, वो जो भी है आप उन्हें बुलाएं ताकि वो आहान के साथ रहें, हो सकता है इससे उनकी मेमोरी वापस
वापस लौट आए। आपको बता दूं ये टेम्प्रेरी है, तो वो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने आहान की पूरी हेल्थ रिपोर्ट उन्हें बताई। डॉक्टर की बात सुनकर शिवानी वहीं पर रोने लगी। तो फिर आयुष ने पूछा, उन्हें कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, क्या आपको कुछ आइडिया है डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये सिचुएशन प्रिडिक्टेबल नहीं है। बहुत से केसेस में एक हफ्ते में ही सब ठीक हो गया, तो कभी कभार एक साल लग जाता है। कुछ केसेस में पेशेंट की मेमोरी तो वापस आ जाती है, पर वो चीजें भूलने लगता है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि उन्हें कुछ लोगों के नाम याद है, हो सकता है फिर उन्हें उनके चेहरे भी याद आने लगे, डॉक्टर ने बताया। आहान की हेल्थ रिपोर्ट जानने के बाद शिवानी को खुद का संभालना मुश्किल हो रहा था। वो आयुष के साथ बाहर आई। आहान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, तब तक उनकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। विजय ओबेरॉय वापस आ चुका था और साथ में दामिनी भी। उन्होंने फिर से अपने शेयर्स को हासिल कर लिया था। इस वक्त शिवानी के लिए अपने घर और बाकी चीजों से ज्यादा जरूरी आहान को फिर से ठीक करना था, इसीलिए वो उसे वापस उसके विला में ले आई थी। आहान के एक्सीडेंट को आज पूरे 7 महीने हो गए थे, लेकिन फिर भी उसकी याददाश्त अभी तक नहीं लौटी थी। शिवानी ने उसे फोटोग्राफ्स के जरिए अपने और आयुष से रिश्ते के बारे में बताया, तब वो उन्हें पहचानता था, वरना शुरुआत में वो उनके साथ भी ऐसे बिहेव करता था जैसे वो कोई अजनबी हो। वहीं दूसरी तरफ आहान अपने ऑफिस में तनु के साथ बैठा हुआ था। एक्सीडेंट के साथ एक और बुरी चीज हुई थी, और वो थी कि आहान के गुस्से की बीमारी वापस आ चुकी थी। हालांकि वो शिवानी और आयुष के सामने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता था। रिलैक्स हो जाओ आहान, ऐसे अंदर ही अंदर घुटने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो ठीक से कुछ याद भी नहीं, फिर तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो, तनु ने उसे शांत करते हुए कहा।
मैं सब कुछ नहीं भुलाऊं तनु, अभी भी मुझे कुछ चीजें याद है, पर ठीक से याद नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ सब कुछ गलत हो रहा है और मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा। इस लाचारी की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरा मन करता है मैं सबकी जान ले लूं, आहान ने एग्रेसिव होकर कहा। इस वक्त उसके हाथ में स्ट्रेस बॉल थी जो वो तनु के कहने पर बार बार दबा रहा था। तनु ने आहान को कुछ मेडिसिन्स देते हुए कहा, कम से कम तुम अपना मेडिकेशन तो कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हें याद नहीं पर तुम्हारी पिछली बार की बीमारी काफी हद तक दवाइयों की वजह से ही ठीक हुई थी। तनु की बात सुनकर आहान ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा तो उसने अपनी नजरें नीची कर लीं। आहान ने उसी अंदाज में कहा, मैं पूरी दुनिया को भूल सकता हूँ लेकिन अपनी डॉल को नहीं तनु, तो मुझसे झूठ मत बोलो, उसी की वजह से मेरा गुस्सा शांत हुआ था। और अब पता नहीं वो ऑफिस अब तक क्यों नहीं आई, जबकि मैं उसे सुबह बात कर आया था, मेरा मूड ऑफ है। आहान की बात सुनकर तनु चुप हो गई। उसने अपने मन में कहा, अब कैसे समझाऊं तुम्हें आहान कि तुम्हारी डॉल अब वो डॉल नहीं रही जो तुम्हारा गुस्सा शांत करती थी, पूरी शिद्दत से तुम्हें प्यार करती थी। सब बदल गया है, इतना बदल गया है कि तुम तो अपनी डॉल को। अचानक तनु का ध्यान टूटा तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसने देखा केबिन का दरवाज़ा एक झटके से खुला था। जैसे ही दरवाज़ा खुला आहान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने उस तरफ देखकर कहा, थैंक गॉड तुम आ गई हो डॉल, मुझे गुस्सा आ रहा है, डू समथिंग वरने मैं कुछ कर जाऊँगा। और तनु प्लीज़ तुम बाहर जाओ, मुझे अपनी डॉल के साथ अकेले रहना है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, आजकल ये भी मेरा गुस्सा शांत नहीं कर पाती है। गुस्सा तो तब शांत करेगी ना जब ये तुम्हारी डॉल होगी, तनु ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा और दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखा जो चाहत के बजाय अक्षरा गोयन का थी। अक्षरा ने तनु की तरफ तिरछी निगाहों से देखा और उसे बाहर जाने का इशारा किया। आहान के लिए अब उसकी डॉल अक्षरा गोयन का बन गई थी, जबकि चाहत कहाँ थी इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, यहां तक कि अब अक्षरा को भी नहीं। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते रहेंगे और जल्द ही आहान और चाहत भी मिल जाएंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग। नई कहानी का टीजर अंडर द माफिया मून के नाम से मिल जाएगा। जैसे ही वो दोनों वहां से थोड़ी आगे गईं, उनके पीछे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ गए। सारा कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक माफिया प्रिंसेस थी जो उस वक्त की रूलिंग माफिया की पोती थी। कुछ और भी बातें थीं जो उन्हें उन सबसे अलग बनाती थीं। इसी वजह से एनी टाइम उसकी सिक्योरिटी हाई रहती थी। आज तो तुमने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, काम डाउन वरना यहां भी ब्लास्ट हो जाएगा, कृषा ने उसे चीयर करने की कोशिश की। अपना मुंह बंद रखो, सारा ने जवाब दिया। वो वाकई काफी गुस्से में थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों के पीछे थे। उन दोनों से थोड़ा ऊंचाई पर एक छोटा सा पक्षी उड़ रहा था। वो एक एडवांस ड्रोन था जो उन पर नजर रखने के लिए किसी ने प्लांट किया था। जैसे ही उस इंसान ने उन दोनों को अकेले देखा उसके फेस पर स्माइल थी। बी रेडी फॉर एक्शन, एक आदमी की कोल्ड वॉइस आई। उसकी आवाज सुनकर कहीं दूर हलचल होने लगी। जिस इंसान ने उन्हें ऑर्डर दिया वो कहीं और मौजूद था। उसके हाथ में आईपैड था जिससे वो उन दोनों पर नजरें बनाए हुए था। उसकी हेजल ब्लू आईज एक पल के लिए भी स्क्रीन से इधर उधर नहीं हुई थी। जिसने स्विम सूट पहना है उसे उठाना है, बाकी लोगों को मार देना, उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ में कहा।
लेकिन अगर दूसरी लड़की को छोड़ा तो वो जाकर कोई भी क्लू दे सकती हैं। पिछले 5 महीने में पहली बार ये ज्यादा भीड़ से अलग है। गार्ड से हम निपट लेंगे क्योंकि वो अलग गाड़ी में होंगे, पर ये लड़की सारा सिंघानिया के साथ ही रहेगी। जवाब में एक आदमी की भारी आवाज आई। वो पायलट के पास था। ओके देन, फिर उसे डेस्टिनेशन पर लाकर मार देना, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो एक बड़े से विला में बैठा था। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था जिस पर उसकी उंगलियां चल रही थी। सारा सिंघानिया, अगले 24 घंटों के बाद तुम मेरे पास होगी। कहते हैं जब शेर बूढ़ा होता है तो उसे खुद ही जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना जवान शेर उसे मारकर खुद राजा बन जाता है। तुम्हारा दादा ये बात भूल गया है, पर उसे ये याद दिलाने के लिए अंडरवर्ल्ड का डेविल अभी जिंदा है, वो मुस्कुराते हुए बोला। वहां बैठा वो शख्स अंडरवर्ल्ड में डेविल के नाम से फेमस था। उम्र लगभग 27 साल, 6 फुट 3 इंच लंबी हाइट और मस्क्यूलर बॉडी के साथ वो काफी हैंडसम था। सब उसे उसके असली नाम के बजाय डेविल के नाम से जानते थे। वो बिल्कुल किसी डेविल की तरह था, जो सामने वाले की हर ख्वाहिश पूरी करने की हैसियत रखता था और बदले में बिल्कुल किसी डेविल की तरह उसे हर तरह से यूज करता था। लगभग 21 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद चॉपर लंदन पहुंचा। उसने एक बड़े से विला के पीछे बने हेलीपैड पर लैंड किया। वहां की सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी। इस सबके बीच सारा और कृषा को अंदर ले जाया गया। कुछ ही देर में वो दोनों उस शख्स के सामने मौजूद थी जिसने ये करवाया था। उसे देखते ही सारा बोली, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। पूरा माफिया एम्पायर मिलकर तुम्हें ऐसी सजा देगी जो तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेगी। उस लड़के ने शांत चेहरे के साथ सारा की बात सुनी। उसने अपना चश्मा उतारा और उन दोनों को गौर से देखा। वो चुपचाप खड़ा था। तभी सारा ने देखा कि उसके हेड सिक्योरिटी गार्ड को यहां लाया जा रहा था। उसके कंधे और घुटनों पर गोली लगी थी जिसकी वजह से वो दर्द से कराह रहा था। उस शख्स ने गन निकाली। वो सारा के सिक्योरिटी गार्ड के पास गया, उसे बालों से पकड़ा और सारा की तरफ देखते हुए गन उसके मुंह में डालकर 2 गोली चला दी। इसके बाद दोबारा गोली चलाई और एक के बाद एक 3 फायर उसके मुंह में किए। कुछ ही सेकंड में गार्ड की लाश जमीन पर पड़ी थी। फिर वो खड़ा हुआ और सारा के पास आकर बोला, तो क्या कह रही थी? कुछ महंगा पड़ेगा। कितना महंगा? इतना महंगा कि वो युगराना को टक्कर दे सके? उसके अपना नाम लेते ही सारा वहीं फ्रीज हो गई। युगराना उर्फ डेविल का अब तक उसने नाम सुना था और आज वो उसके सामने था।